टच आ गया, उन्होंने फिर कोई प्रकाश संबंधी बाण छोड़ा तो यहां वो पूरा तामस बाण समाप्त, प्रकाश छा गया। उन्होंने ये सारी वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऐसे कुछ पदार्थ होते थे जिसको ऐसे छोड़ने पर पूरा अंधेरा हो जाता था, दिखना बंद हो जाता था। अभी तो क्या टीयर गैस और कुछ ऐसे दो चार चीजें अभी विज्ञान ने खोज ली और फिर समझ रहे हैं कि बहुत उन्नत हो गया है। अब उस समय का विज्ञान कितना उन्नत था वो उन्होंने प्रमाणित किया है। और फिर उन्होंने कुछ दीवारों के फोटोज दिए हैं, बोले कि ये दीवार आज के वैज्ञानिक भी बनाकर बता दे जो उस समय पुराने जमाने में बनी हुई है। पोलो मंदिर बना के बता दे कोई आज। क्रेन के बिना पत्थर उठ नहीं सकता आज, और उस समय बिना क्रेन के इतने बड़े बड़े विशाल शिलाखंड इतने बड़े मंदिर के शिखर के ऊपर कैसे पहुंचाए होंगे उनने। ये बहुत बड़ी भूल है अपनी कि अपन पुराने लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि उनको कुछ नहीं आता होगा, हमारे दादाजी तो अनपढ़ थे उनको क्या आता था। ऐसा नहीं है, अनपढ़ होते हुए भी आज पढ़े लिखों से आगे चलती थी बुद्धि, और शताब्दियों पहले वो जो ज्ञान था। अभी जैसे जैन दर्शन क्या कहता है कि अवसर्पिणी काल में सब रास की तरफ है, तो अभी ये सब घट रहा है, और घटते हुए ज्ञान में ये सोच रहा है आज का आदमी, सोच रहा है कि हमारा विज्ञान और हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। ये बात अलग है कि हुंडा अवसर्पिणी में जो घटने वाला ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और सामान्य अवसर्पिणी में ऐसा होता है। जिनने ग्राफ पढ़ा हो, कौन सा मैथमेटिक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें ग्राफ जिनने पढ़ा हो तो वो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ग्राफ अवसर्पिणी में। लेकिन हुंडा अवसर्पिणी में क्या होता है कि वो सीधी रेखा में नीचे नहीं जाता, उसका क्रम थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, तो कभी कभी ऐसे विकास जैसा हो जाता है, फिर कभी कभी ह्रास होता है, फिर विकास ह्रास, ऐसा चलता है। अभी एक किसी ने, शोधकर्ता ने पूना में एक बहुत गहराई से महावीर स्वामी के ऊपर शोध करके एक जानकारी प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि सन 2028 के बाद जैन धर्म के विकास का समय आने वाला है। अभी तो ह्रास की तरफ है, क्योंकि लगभग हर जैनी के घर में रात्रि भोजन है। इससे बड़ा ह्रास क्या हो सकता है कि जैन धर्म का जो मूल आचरण था वही गायब हो गया, और जैनी लोग भी ऐसे व्यापार कर रहे हैं जो त्रस कायिक जीवों की हिंसा से संबंध रखने वाले हैं, दवाइयों के व्यापार और कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स के व्यापार, कीटनाशक पदार्थों के व्यापार, केमिकल्स के व्यापार, और फिर न जाने क्या क्या, और उसमें कोई परिमाण भी नहीं करना चाहते वो। नहीं, ये तो व्यापार उद्योगी हिंसा है। अरे भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करो। उद्योगी हिंसा, चार प्रकार की हिंसा होती है ना, कौन सी? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन चारों का सर्वप्रथम किसने वर्णन किया? आदिनाथ प्रभु ने। तो आरंभ और उद्योग बताने वाले कौन थे सबसे पहले? आदिनाथ भगवान। लेकिन उनने केवल ज्ञान के बाद ये सारा उपदेश नहीं दिया, तब तो उन्होंने श्रावक और मुनि धर्म का ही उपदेश दिया, लेकिन उसके पहले वही सारी बातें बता गए। क्या उन्होंने इन उद्योगों का उपदेश दिया है जो आप कर रहे हैं? ये तो आपने अपने संकल्प से उद्योग मान करके रख लिया। तो अपने संकल्प से आप अगर किसी चीज को उद्योग मान करके उद्योग करते हैं, तो वो चूंकि आपके संकल्प से संकल्पित है, वो उद्योगी हिंसा न होकर के संकल्पी हिंसा की श्रेणी में चली जाती है। जैसे वो कोठारी भाई थे, हैदराबाद के पास जो रुद्रारम में अल कबीर नाम का यांत्रिक कत्लखाना था, वहां पर वो मैनेजर थे। आराध्य देव 24 तीर्थंकर, और एक दिन में जहां पर 500 भैंसों का कत्ल होता है, उस कत्ल खाने के मैनेजर, उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, उनने एक जवाब दिया फट से, ये उद्योगी हिंसा है। बोले जैनी को संकल्प हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर उनको साधुओं ने जाकर समझाया, क्या समझाया, यही समझाया जो अभी हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत समझदार हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या, जिस उद्योग को आपने अपने संकल्प से उद्योग की श्रेणी में गिन लिया है, जबकि आदिनाथ प्रभु ने उसको उद्योग नहीं बताया था, प्रजा के लिए, प्रजा के लिए आदिनाथ भगवान ने जो उद्योग बताए थे, अगर वो उद्योग आप करते हो तो उद्योग ही हिंसा है। जो आरंभ उन्होंने बतलाए थे वो आरंभ यदि आप करते हैं तो वो आरंभ ही हिंसा है। लेकिन आप अगर अपने मन से किसी चीज को उद्योग मान करके उसकी उस उद्योग का प्रवर्तन करते हैं तो वो चूंकि आपके संकल्प से संकल्पित है उद्योग रूप में, तो वो कौन सी हिंसा होगी, संकल्प हिंसा। इसी प्रकार डेक्सोरेंज वगैरह जो दवाइयाँ बेचते हैं, और भी ऐसे कई भी हीमोग्लोबिन टॉनिक्स होते हैं, बछड़ों के खून से बनने वाली दवाइयाँ हैं, उसका उद्योग करने वाले जो लोग हैं वो सारे संकल्पी हिंसक लोग हैं, वो जैन तो हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं जैन, जो ऐसे क्रूर उद्योग से अपनी कमाई करते हैं और उस कमाई का पैसा खाते हैं, वो कैसे हो सकते हैं जैन। ज्यादा कठोर बोल गए क्या, होता है कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं, पर अपने को आत्महित में इसके बारे में विचार करना चाहिए। नरम भाषा में कभी कभी कुछ बातें अपने गले नहीं उतरती। ठीक है, महाराज जी ने कहा तो है, ठीक चल रहा है, क्या है, किसको पता है, वो ऐसा चल जाता है। लेकिन नहीं, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और फिर और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं कि जिन जो कार्य अपने लिए वर्जित होने चाहिए। जैनत्व की सीमा अगर भंग हो गई तो फिर क्या बचा, फिर अपने को जैन बोलने का अधिकार कहाँ रहा। तो इसलिए क्षमा सागर महाराज जी है और सुधा सागर महाराज श्री के साथ में गंभीर सागर जी, धैर्य सागर जी है, वो कई ऐसी बातों को भी बतला देते हैं बीच बीच में कि भाई इन चीज़ों को छोड़ो, ऐसे श्रृंगार मत करो जो प्राणियों की क्रूरता से उपलब्ध हुए हैं। प्राणियों के प्रति बहुत क्रूर बर्ताव किया गया है उन श्रृंगारों के पीछे, ऐसे श्रृंगारों का इस्तेमाल मत करो। पूना में एक संस्था खोली किसी डायना रत्नागर ने, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, और उसमें उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, उन्होंने ये पता लगाया कि ऐसे कौन से साधन हैं जिसमें प्राणियों की हिंसा नहीं हुई है। अभी हमारे पास एक लिस्ट रखी है, बाजार में मिलने वाले कौन से वस्तुएं आपके खरीदने के योग्य हैं और कौन सी नहीं खरीदने योग्य है। मेडी मिक्स साबुन भी अशुद्ध है, लक्स लिरिल की तो कल्पना ही छोड़ दो आप, वो छूने लायक नहीं है। लक्स और लिरिल और जो और भी जो साबुन है बहुत सारे, अभी तो हम पुराने नाम बता रहे हैं जो हमारे उस समय चलते थे, अभी तो पता नहीं और कौन से साबुन आ गए। पूरी एक सूची है इंग्लिश में, हमने उसका हिंदी अनुवाद भी किया है और उसको हम प्रकाशन में देने वाले। वैसे कायदे से देखा जाए भारतीय संस्कृति के अनुसार तो आपको मसूर की दाल का चूर्ण बना करके शरीर पर घिस लेने से वो साबुन से भी अच्छा काम करता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, उससे रोम कूप भी खुल जाते हैं, रोम छिद्र भी खुल जाते हैं और चर्म रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। मसूर की दाल, मसूर की दाल ना हो तो फिर मूंग की दाल भी काम कर सकती है, बेसन भी काम कर सकता है, अगर उससे शरीर में रूखापन आता हो तो फिर और भी बहुत सारे उपाय हैं। ये सारी चीज़ें अभी लुप्त हो गई हैं, जब से साबुन आ गया दुनिया में तो ये सारी चीज़ें गायब हो गई और अब साबुन के बिना काम नहीं चलता, जबकि अधिकतर साबुन टैलो से बनते हैं। टैलो का अर्थ होता है मछली की चर्बी, और प्रैक्टिकली अगर आप आंखों से देख लेना कभी तो फिर आप एकदम हाथ जोड़ लेंगे कि आज तक जो हुआ सो हुआ, अब कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो फिर इतना सब गलत काम करने के बाद भी अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरे को सौधर्म स्वर्ग में तो स्थान मिलेगा कम से कम, और वरना सोलवे स्वर्ग को तो मुझे जाना ही है, ये सब बकवास की बात है, छोड़ो। आप अभी बंतर बन जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है, ये सुन लो ध्यान से। देव गति मिलना भी बहुत मुश्किल है, इतने पाप कमा करके कौन सी गति मिलेगी ये तो विचार करो। क्यों खुद को और दूसरों को धोखा देते हो? धर्मात्मा का स्वांग करने से धर्म प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपनी गलतियों को निकालने पर सुधार होता है जीव का। उतना सुगम नहीं है धर्म जितना अपन समझ रहे हैं, और उतना कठिन भी नहीं है जितना कुछ लोग समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये अपने बस का नहीं है। अरे अभी ये भ्रमण का स्वरूप सुनो तो फिर लगेगा कि नहीं, बस का हो या ना हो अपने को करना तो चाहिए, नहीं करेंगे तो बहुत बुरे हाल होंगे। ये जो भ्रमण है ये तो और खतरनाक है उससे भी। मिठाई नहीं छोड़ सकता कोई, अब डायबिटीज डायग्नोस हो गया तो अब वो समझता है कि भले मिठाई मेरी प्राणों से प्यारी वस्तु है, लेकिन अगर अभी नहीं छोड़ता तो फिर मिठाई छोड़ेगी मुझे क्या? मिठाई मुझे छोड़ देगी, मेरी मौत हो जाएगी, अब क्या करना? मिठाई मुझे छोड़े वो बहुत कष्टदायी होगा, मैं मिठाई को छोड़ दूंगा तो उससे कुछ सुख प्राप्त हो सकता है। तो अब क्षेत्र परिवर्तन में जो परक्षेत्र परिवर्तन है उसको अपन अगली बार देखेंगे। 68वीं गाथा की टीका में परक्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन के दो विकल्प, द्रव्य परिवर्तन दो प्रकार का था, नौकर्म और कर्म। क्षेत्र परिवर्तन स्व और पर क्षेत्र की अपेक्षा दो प्रकार का। स्व क्षेत्र परिवर्तन में सबसे छोटा आकार और सबसे बड़ा आकार, इसको जब जीव प्राप्त करता है क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ाता हुआ, तो जितना समय लग जाता है और जितने भव वो धारण कर लेता है उस भ्रमण का नाम क्षेत्र परिवर्तन है, स्व क्षेत्र परिवर्तन। और पर क्षेत्र का देख लीजिए, परक्षेत्र परिवर्तन अंतु, किंतु जो परक्षेत्र परिवर्तन कैसा है, सूक्ष्म निगोदो पर्याप्तक है, सूक्ष्म जो अपर्याप्तक निगोद जीव है, सर्व जगन्यावगाहन शरीर है, सबसे जगन्य अवगाहन वाले शरीर का धारी है, लोकम लोक मध्याष्ट प्रदेशान स्वशरीर मध्याष्ट प्रदेशान कृत्वा उत्पन्न, लोक के मध्य के जो आठ प्रदेश हैं मेरु पर्वत की जड़ में, पूरे 343 राजू प्रमाण जो लोक है उसके बीच वाले आठ प्रदेश कहलाते हैं, उनको रुचक प्रदेश बोलते हैं। रुचक वो आठ प्रदेश होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसको गोस्तनाकार भी बोलते हैं, ऐसे गाय के जो थन होते हैं उसके जैसा आकार बनेगा, ऐसे रेखा अगर ऐसे बना लो आप तो ऐसा आकार बनेगा। तो लोक के मध्य में जो आठ प्रदेश हैं उन प्रदेशों को अपने शरीर का मध्य भाग बनाकर, जैसे अभी अपन मनुष्य पर्याय में हैं तो अपने शरीर के मध्य जो आठ प्रदेश होते हैं वो नाभि स्थान पर आते हैं, वो रुचक प्रदेश, आत्मा के जो रुचक प्रदेश हैं वो मध्य के वो आठ प्रदेश होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव है वो सुमेरु पर्वत के बीच वाले रुचक प्रदेशों को अपनी आत्मा के मध्य प्रदेशों के साथ जोड़कर, माने उन प्रदेशों में अपनी आत्मा के मध्य प्रदेशों को स्थापित करके उत्पन्न होता है। इच्छा से नहीं होगा, कर्म योग से होगा, क्योंकि इच्छा से कुछ चलता नहीं यहाँ पर, वो तो कभी पुण्य के उदय से कोई एकाध इच्छा पूरी हो जाए तो हो जाए, बाकी कुछ भी इच्छा से संभव नहीं है, कर्म बंद हो सकता है इच्छाओं से। तो क्या करता है कि स्वशरीर मध्याष्ट प्रदेशान कृत्वा उत्पन्न, अपने शरीर के बीच वाले आठ प्रदेशों को बनाकर वहाँ पर उत्पन्न होता है, और क्षुद्र भव कालम 1/18 जीवित्वा मृतः, क्षुद्र भव का काल जो है 1/18 क्या श्वास, उतना काल जीवित्वा जीकर मृतः मर जाता है। स एव पुनः, वह ही जीव फिर से तेनैव अवगाहनेन उसी अवगाहना के साथ द्विवारम त्रिवारम एवं यावत घनांगुलासंख्ये भागवारम तत्रैव उत्पन्न, क्या करता है वो घनांगुल के असंख्यातवे भाग में कितने प्रदेश होते हैं असंख्यात, तो वो जगन्य अवगाहना है किसी भी जीव की, निगोद में सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो लब्धि अपर्याप्त तक जीव उत्पन्न होता है वो इतना छोटा होता है, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, और उस असंख्यातवे भाग में भी आकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो वो असंख्यात जितने असंख्यात है, जितने असंख्यात यानी असंख्यात कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के हैं, तो उनमें से वो वाले जो असंख्यात है उतनी बार वो उसी अवगाहना के साथ उसी स्थान पर उत्पन्न होगा। क्षेत्र परिवर्तन की चर्चा है तो वो उतनी बार उस अवगाहना के साथ उसी क्षेत्र पर उत्पन्न होगा। ये लिखा ना, यावत घनांगुल असंख्ये भाग वारम, जितने घनांगुल के असंख्यात वे असंख्यात भाग है, असंख्यात वे भाग में जो असंख्यात प्रदेश है उतनी बार तत्रैव उत्पन्न, वहीं मेरु के जड़ में उत्पन्न होकर पुनः फिर एक एक प्रदेशाधिक भावेन, एक एक प्रदेश बढ़ाता हुआ नई नई पर्यायों को धारण करके सर्वलोकम त्रिचत्वारिंशद अधिक त्रिशत 343 रज्जु प्रमाणम स्वजन्म क्षेत्र भावम नयति। एक एक प्रदेश बढ़ाता बढ़ाता वो सारे 343 राजु प्रमाण जो क्षेत्र है लोक का, उसके हर स्थान पर जन्म धारण कर लेता है। स्वजन्म क्षेत्र भाव नयति, अपने जन्म स्थान बना लेता है वो। इति परक्षेत्र परिवर्तनम, ये इस प्रकार परक्षेत्र परिवर्तन है। अब ये जैसे जन्म का कहा है उसमें मरण को भी साथ में गर्भित कर लेना कि वहाँ जन्मा मरा, ऐसा पूरे लोक में जितने स्थान है वहाँ पर जन्म को जिस प्रकार क्रम से पूरा किया वैसे मरण को भी प्राप्त हो जाए, तो उसमें जितना समय लगेगा और जितने भाव हो जाएंगे उस भ्रमण का नाम है परक्षेत्र परिवर्तन। परक्षेत्र में क्या होता है कि वो ये जो आकाश का क्षेत्र है उसको अपने जन्म मरण से पूरा करता है, और स्वक्षेत्र में क्या होता है कि अपनी आत्मा के प्रदेशों को बढ़ाता हुआ जो जगन्य से उत्कृष्ट आकार है उसको धारण करता हुआ पूरा करता है। स्वक्षेत्र परिवर्तन में ये अनिवार्य नहीं है कि पूरे 43 राज्यों में जाकर जन्म मरण करे। स्वक्षेत्र के लिए क्या है कि अपना आकार जगन्य से लेकर एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए 1000 योजन के महामत से जितना उत्कृष्ट बन जाए तो वो स्वक्षेत्र परिवर्तन हो जाएगा, और परक्षेत्र परिवर्तन में लोक के एक एक स्थान पर जन्म मरण हो जाए। उक्तम च गाथा भी है, ये 12 सानुवेक्खा के आचार्य कुनकुन स्वामी की गाथा है। सवम मिलोय खेते कमसोत्तम नथि जन्न उच्छिन्नो उगाहणा उबोसो हिंडन तो खेत संसारे। उच्छिन्न और उपन्न अर्थ क्या किया पंडित जी ने? उच्छिन्न का अर्थ मरना होगा और उपन्न का अर्थ जन्मना होगा। किया ही नहीं है, उत्पन्न न हुआ हो। ठीक है, पेज 34 की 5वीं लाइन में क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो, तो उच्छिन्नो से तो उत्पन्न अर्थ नहीं निकलता। उच्छिन्न इसीलिए हमने इस शब्द पर ध्यान दिया था कि इसका अर्थ पंडित जी ने क्या किया। उच्छिन्न शब्द से मरण होता है, नष्ट होना है। तो खैर अभी इसमें जो वर्णन चला था वो तो जन्म की अपेक्षा चला था, दोनों बातें हैं, क्योंकि ऊपर मूल गाथा में तो जादो मरिदो है कि नहीं। 68 गाथा में देख लो आप, जादो मरिदो या बहुवार, जन्म और मरण दोनों लिए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सबम में लोहे खेते, सारे लोक के क्षेत्र में क्रमशः बहुसो उगाहणाऊ, बहुत सारे बहुत बार हर अवगाहना के साथ खेत संसारे हिंडन, तो क्षेत्र संसार में भ्रमण करने वाले जीव ने तम नथी जम न उच्छिन्न, वह स्थान नहीं है जहां वह मरा न हो और जन्मा न हो, यानी सारे लोक में क्षेत्र परिवर्तन करते हुए जीव ने अपने क्षेत्र को भी छोटे से बड़ा बना लिया और लोक के क्षेत्र में भी सब जगह उसने जन्म और मरण को प्राप्त कर लिया। अब काल परिवर्तन का वर्णन सुनिए। द्रव्य परिवर्तन से विशाल क्षेत्र परिवर्तन, अब क्षेत्र से बड़ा काल परिवर्तन, देखिए कितना खतरनाक है, सुनिए। ओवसप्पेणी अवसप्पेणी पढ़म समय आदि चरम समयंतम। एक मात्रा कम हो रही है, वो छोटी किताब में क्या पार्ट है? समयम में पढ़मम के ऊपर बिंदी है ना, समयंतम पर तो बिंदी है, यहां भी है। उवसप्पेणी अवसप्पेणी पढ़म समय आदि चरम समयंतम। देखो मात्राएं गिन लो, 18 आनी चाहिए वैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक मात्रा पढ़ने में समझ में आ रहा था कि एक मात्रा घट रही है। छाया देखो इधर क्या है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रथम समयादि चरम समयांतम। व्याकरण के हिसाब से तो एक पाठ बन सकता है, लेकिन अपन मूल गाथा में संशोधन करने का अधिकार नहीं रखते, इसलिए अपन कुछ नहीं करते। इतना जरूर है कि अगर 17 मात्रा है और मात्राओं की त्रुटि आचार्यों से हो, ये तो मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरे कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कहीं भी कोई भी छंद मात्राओं की अपेक्षा से कहीं भी स्खलित नहीं है, परफेक्ट है पूरे। हो सकता है कहीं लिपिकार के माध्यम से या फिर प्रिंटिंग में या कहीं किसी कारणवश वो एक मात्रा कम हो रही है, और वो एक मात्रा सिर्फ एक स्थान पर बन सकती है, पढ़म समयादिय चरम समयंत। दी के आगे एक यह हो सकता है, संभावित बता रहे हैं आप, सुधार मत देना वहां पर। पढ़मा पढ़म समयादिय चरम समयंत ऐसा कुछ बन सकता है, या फिर जैसा है ठीक है, इसका अर्थ अपन देख लेंगे। ये तो हो गई छंद और व्याकरण की बात, लेकिन जीवो कमेण जम्मदि मरदीय सव्वेसु कालेसु। क्या प्रचंड है ये भ्रमण संसार का, ये तो सब भूल भाल के अपन मस्ती में बैठे हैं, इसलिए सब यहां पर अपन मगन हो गए हैं। ये स्मरण करो तो फिर रोंगटे खड़े हो जाए। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रथम समय को आदि लेकर चरम समय पर्यंत जीव क्रम से सव्वेसु कालेसु सभी कालों में, उत्सर्पिणी के कितने काल है और अवसर्पिणी के कितने काल है, तो 6-6 काल है, तो पहले काल से लेकर 6ठे काल तक सभी कालों में प्रत्येक समय में जन्म और मरण को जब जीव प्राप्त कर लेता है तो क्रमेण क्रम से तब उसका एक काल परिवर्तन होता है। इसका खुलासा समझ लो, टीका में देखना हो टीका में देख लो, नहीं तो ऐसे व्याख्या में भी आ सकता है, बहुत सरल है कि ये जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल है उसकी अवधि आप सुन लो, इन दोनों को मिलाकर एक कल्प काल कहते हैं। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी नहीं, पहले उत्सर्पिणी और फिर अवसर्पिणी, इन दोनों को आप मिला लो तो एक कल्प काल होता है, और एक कल्प काल की जो अवधि है वो 20 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। और कल्प काल की जो दो विभाग है, उत्सर्पिणी यानी ऊपर की तरफ सर्पण करने वाली, बढ़ने वाली जो काल की अवधि है वो उत्सर्पिणी काल कहलाता है। और फिर अवसर्पण, अवसर यानी नीचे की तरफ जाना, वो अवसर्पिणी काल है। उत्सर्पिणी में आयु, अवगाहना, बुद्धि, बल, वैभव आदि सब क्रम से बढ़ता जाता है, और अवसर्पिणी में ये सारी चीज़ें घटती जाती हैं। तो इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं कि अब इसके जो छः छः काल हैं, उन छः कालों का विभाग भी यदि आपकी जानकारी में हो, शायद भक्तामर में हमने दिया था क्या, पूरे छः कालों का वर्णन नहीं किया, तो अभी सुन लीजिए। उत्सर्पिणी का जो प्रथम काल है उसका नाम है अति दुष्यमा। उत्सर्पिणी का पहला काल अति दुष्यमा, या दुखमा दुखमा भी कह सकते उसको। उसकी अवधि 21,000 वर्ष है। उसके प्रारंभ में आयु 16 वर्ष है, ऊंचाई 1 हाथ प्रमाण है मनुष्य की, और जब 21,000 वर्ष पूरे होते हैं तो धीरे धीरे उत्सर्पिणी में ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो आयु तो हो जाती है 20 वर्ष, और अवगाहना हो जाती है। अवगाहना के बारे में 3 मत मिलते हैं शास्त्रों में, एक मत है 2 हाथ, दूसरा मत है 3 हाथ, तीसरा मत है 3.5 हाथ। तो वो अति दुष्यमा काल के अंत में इतनी ऊंचाई हो जाती है, 3.5 हाथ का तिलोय पंडिति में उल्लेख मिल जाता है, कहीं 3 हाथ का भी उल्लेख, 2 हाथ का उल्लेख भी ग्रंथों में आता है। फिर उसके बाद जो दूसरा काल आता है उसका नाम है दुष्यमा। अपना जो चल रहा है अभी 5वां चल रहा है, ये अवसर्पिणी का 5वां काल दुष्यमा है, उत्सर्पिणी का दूसरा काल दुष्यमा है, इसको दुखमा भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उत्सर्पिणी में प्रारंभ में 20 वर्ष आयु होती है और अंत में 100, 115 या 125 इस प्रकार की अवधि दी है आयु की। तो अंत में मतलब जहाँ से तीसरा काल प्रारंभ होने वाला है, तीर्थंकरों का काल, वहाँ तक इतनी आयु बन जाती है। और फिर ऊंचाई जो है वो 7 हाथ प्रमाण हो जाती है अंत में। और फिर वो 21,000 साल जब व्यतीत हो जाते तो 42,000 वर्ष में 2 काल समाप्त हो गए। अब जो तीसरा काल आता है तीर्थंकरों का, शलाका पुरुषों का काल, उस काल के प्रारंभ में जो ऊंचाई होती है वो 7 हाथ प्रमाण होती है, और अंत में जो ऊंचाई होती है वो 525 धनुष प्रमाण होती है। और ये 3 काल पूरे मिला करके 1 कोड़ाकोड़ी सागर है। यानी तीसरा काल कितने समय का हुआ, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर, क्योंकि 42,000 वर्ष में 2 काल हो गया, ये 3 काल हो गया। उसके बाद जब वो तीसरा काल समाप्त होता है तब चौथा काल आता है। तीसरे काल का नाम है दुष्यमा सुषमा, दुखमा सुखमा, और वहां के अंत में जो आयु बनती है वो 1 पूर्व कोटि होती है तीसरे काल के अंत में, जो अंतिम तीर्थंकर होंगे उनकी आयु। और उसके बाद फिर जो चौथा काल आता उत्सर्पिणी का, वो बस ये क्रम बदल देना है। इसमें क्या है, ये जो शुरू के नाम याद रखने का एकदम ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, सरल तरीका, इसमें ये तीनों काल के नाम दू से चालू होते हैं। एकदम आसान तरीका याद रखने का, कभी भूलेंगे नहीं आप, ये 3 काल जो है इसके नाम दू से चालू होंगे। पहला काल दुष्यमा दुष्यमा, दूसरा काल दुष्यमा, तीसरा काल दुष्यमा सुषमा। अब कभी भटकने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद फिर जो आगे के काल आते हैं वो तीनों सु से चालू होते, तो वो जो चौथा काल आएगा उत्सर्पिणी का, उसका नाम है सुषमा दुष्यमा। वो जघन्य भोग भूमि का काल है, उसके प्रारंभ में एक पूर्व कोटि आयु रहेगी और अंत में एक पल्ल्य आयु रहेगी। प्रारंभ में ऊंचाई 525 धनुष रहेगी, अंत में एक कोस ऊंचाई रहेगी। ठीक है, जो लोग सुन रहे हो तो सुनी लो, जो लोग लिख रहे हो लिख लो। फिर पांचवा काल आएगा, पांचवा काल जो है उत्सर्पिणी का मध्यम भोग भूमि रूप होगा, और मध्यम भोग भूमि में प्रारंभ में एक पल्ल्य आयु रहती, ऊंचाई एक कोस रहती है, और फिर बाद में जब वो समाप्त होता है, अवधि भी हम बताते जा रहे हैं, इसकी जो अवधि है चौथे काल की, दो कोड़ा कोड़ी सागर,